बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि हो। हरि हो। रुद्रमरुत स्तन्ति दिव्ये स्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति अमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीनन के नाथ दयालु रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयालु रे
भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
राधे
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
दीनन के नाथ दयालु रे भजो राधे गोविंदा।
दीनन के नाथ दयालु रे
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा।
मुरली मनोहर घन श्याम रे
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
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 मुरली मनोहर घन श्याम रे 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 भजो राधे गोविंदा।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ विचार कर रहे थे। कल बुद्धि की शरण ग्रहण कर बुद्धम शरणम निवच्य भगवान कहते हैं बुद्धि की शरण को प्राप्त करो। और पहले बुद्धि की शरण और फिर मामेकम शरणम ब्रज। बुद्धि का आश्रय लेकर निश्चयात्मक बुद्धि जिसकी चर्चा कल कर रही थी कि जब तक निश्चय नहीं होगा और निश्चय हमको स्वयं को करना है। बहुत सारी चीजें बाजार में आप जाते हैं आपके आंखों के सामने रखी जाती हैं। कपड़ा खरीदने के लिए गए और अनेक तरह के कपड़े आपके सामने आते हैं, उनमें से कौन सा आपको लेना है ये तो आपको निश्चय करना होता है। उसी तरह बुद्धि का निश्चय अपना ही निर्णय अपना ही निश्चय करके व्यक्ति अपनी बुद्धि के निश्चय को प्राप्त होने से ही वह परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वह बुद्धि सक्षम है जिसमें दृढ़ निश्चय है। और निश्चय जिसका दृढ़ नहीं है, अनिश्चयात्मक बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, असम बुद्धि, वह बुद्धि हमें विषयों के साथ भटकाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, तब विषय ध्यान में आने लगते हैं और विषय भोगों के साथ आसक्ति उत्पन्न होती है। और आसक्ति उत्पन्न होने पर कामना प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है और कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। और क्रोध के उत्पन्न होने से भगवान ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से व्यक्ति बुद्धि विभ्रम हो जाता है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। क्रोध जिस अग्नि में पहले लकड़ी में पहले अग्नि प्रकट होती है, पहले अग्नि उसी लकड़ी को जलाती है फिर और किसी लकड़ी को जलाती है। स्वयं जल के ही वो लकड़ी आग स्वयं लकड़ी को पहले जलाती है और फिर और लकड़ियां जलती है। उसी तरह से हम सोचते हैं कि क्रोध करके मैं दूसरे का नुकसान कर लूं, क्रोध से दूसरे का नुकसान हो उससे पहले बड़ा भारी नुकसान हमारा अपना होता है कि हमारी अपनी अंतः की वृत्ति जो शांत है वो छिन्न भिन्न हो जाती। अत्यंत जो कोमल भाव है, आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक विचार है, वह क्रोध की तपस से जल जाता है नारायण। इसलिए क्रोध कब उत्पन्न होता है, बोले क्रोध उत्पन्न होता है कामना की पूर्ति न होने पर। और इस प्रकार बुद्धि में के नाश हो जाने पर, बुद्धि के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, क्या करें उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और ये कहा नहीं जा सकता कि कब किस व्यक्ति की कहां बुद्धि बिगड़ जाएगी, अर्थात कहां बुद्धि पलट जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए ये बुद्धि पलटने न पावे, बदलने न पावे, इस बुद्धि को सुस्थिरता प्राप्त हो, स्थिरता बुद्धि में आए, उसके लिए हमें स्थित करना होगा। माने स्थिर भगवान है, और भगवान में जो बुद्धि स्थिर हो गई है वो बुद्धि फिर कभी पलट नहीं सकती, बदल नहीं सकती। सबसे सुरक्षित स्थान जहाँ किसी प्रकार का कोई और विक्षेप नहीं है, ऐसा बुद्धि के लिए उपयुक्त स्थान है, वो केवल भगवान की शरणांगति है। केवल भगवान की शरण में जाकर अपनी बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है, भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और उस मनुष्य चित्त स्थिर हुए बिना नास्ति बुद्धि युक्तश्च नायुक्तश्च भावना, जिसके अंदर बुद्धि स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, और ना ही उसके अंदर कोई भाव होता है, ऐसा जो भाव विहीन और स्थिर बुद्धि विहीन है, वह अत्यंत अशांत है। और अशांतश्च कुतः सुखम, जो अशांत है भला उसे सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है, जिसका मन स्थिर नहीं है और जिसके अंदर भाव नहीं है। माने चित्त की शुद्धि नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। अंतःकरण में हमारा मन शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो और अहंकार की शुद्धि हो, ये चार शुद्धियां कही गई। पहली शुद्धि और इनकी शुद्धि शास्त्र और संत कहते हैं श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा निरंतर के ये अंतःकरण शुद्ध किया जा सकता है। तो पहली बात आती है मन की शुद्धि की। मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो कैसे? बोली मन को पवित्र कैसे किया जाए, मन शुद्ध कैसे हो? अर्थात मन में एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की न जाने कितनी वासनाएं इस मन के अंदर इकट्ठी हुई है, और उन वासनाओं के कारण ही नाना प्रकार के भोग की चाह होती है, भोगों की इच्छा होती है। और ये जन्म जन्म की वासनाएं मन से समाप्त हों, उसके लिए उपाय बताते हैं संत शास्त्र। एक ही उपाय है कि मन की उपासना से ही मन की वासना दूर हो सकती है। मन को परमात्मा की उपासना में लगाओ, निरंतर के मन, निरंतर अपने मन को भगवान के समीप रखना ही उपासना है। संसार से ऊपर, संसार से अलग अपने मन को रखना, यही उपासना है। और हम विचार करें कि दिन रात हमारा मन रहता कहाँ है, संसार में सांसारिक लोगों के साथ, संसार में सांसारिक प्रपंच में जो मन दिन रात लिप्त रहता है, भला वो मन कैसे शुद्ध रह सकता है? दिन रात सांसारिक चर्चाओं के अतिरिक्त संसार में विषयों की चर्चा, भोगों की चर्चा, व्यक्तियों की चर्चा, यही निरंतर हमें सुनने को मिलती है। और जो दिन रात मन संसार के साथ सांसारिक विषयों के चिंतन में लगा हुआ हो, संसार के साथ रह रहा हो, वो मन कैसे शुद्ध रह सकता है? इसलिए संत कहते हैं कि इस मन को संसार से उठाकर भगवान के चरणों में रख दिया जाए, क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है, मन सहार, मन को चाहिए अर्थात सहारा। बिना किसी सहारे के ये मन खाली नहीं रह सकता। मन को अभ्यास पड़ा हुआ है, कुछ चाहिए। यदि मन खाली हो जाए तो वह स्वस्वरूप में स्थिर हो जाए, लौट आए। मन खाली रहता ही नहीं, मन अपने लिए ताना बाना बुनकर तैयार कर लेता है। मन को ऐसी आदत पड़ी हुई है, तो ऐसी आदत जो मन को पड़ी है, इसकी आदत को बदलने के लिए हमें मन को कुछ चाहिए। मन क्या चाहता है? जैसे कि मैंने आपको कहा, मन का स्वभाव है रस को प्राप्त करना। मन चाहिए कि वैसाखी के साथ चलता है, ऐसा हो जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, ये प्राप्त होना मिलना चाहिए, ये देना चाहिए। चाह निरंतर मन के साथ बनी रहती है। चाह मन के साथ निरंतर बनी रहती है तो जहाँ चाह है वहाँ एक चाह और, अनेक चाहों में एक चाह हमारी और जुड़ जाए, वो चाह जुड़े भगवान की चाह, परमात्मा के नाम की चाह, परमात्मा की चाह, ईश्वर की चाह। यदि ईश्वर के साथ, ईश्वर की चाह के साथ मन की चाह जुड़ जाएगी तो ये मन जब भगवान के साथ जुड़कर भगवान के लिए विचार करना आरंभ करेगा तो धीरे धीरे मन की वासना, मन की जन्म जन्म की वासना कम होने लगेगी और ईश्वर वासना इसके अंदर बढ़ने लगेगी। भगवत वासना, भगवत इच्छा से जगत की इच्छा को जीता जा सकता है। संसार की आसक्ति भगवदा आसक्ति से जीती जा सकती है। संसार की आसक्ति को यूं कहा जाए कि इसे छोड़ दो तो बड़ा कठिन सा लगता है, परंतु इसके आगे यदि हम संसार की चाह के आगे एक चाह और पैदा कर लें, ईश्वर की चाह, और ये चाह इतनी बुलंद है, करें इसे बढ़ाएं, ईश्वर की चाह बढ़े हमारे अंदर, तड़फ बढ़े, ईश्वर के प्रति विरह बढ़े, भगवान के लिए परम विरह वियोग हमारे अंदर उत्पन्न हो, परम वियोग अवस्था को ही चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की अवस्था मानी है। और परम आश्रय को, सहारा जिसको कहते हैं, आश्रय भरोसा, इसको ही वल्लभाचार्य जी ने भक्ति माना है। और भगवान की शरणांगति, ईश्वर शरणांगति, शरणांगति भक्ति को ही शंकराचार्य जी महाराज ने भक्ति का उत्कृष्ट माना है। भगवान के चरण को पकड़ लेना प्रपत्ति है। हर परिस्थिति में भगवान के श्री चरणों को पकड़े रहना ये प्रपत्ति कहलाती है। रामानुजाचार्य के शब्दों में आप प्रपत्ति कहिए, भगवान शंकराचार्य के शब्दों में शरणांगति कहिए, वल्लभाचार्य जी महाराज के शब्दों में परमाश्रय कहिए, आश्रय कहिए, और चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में परम विरह अवस्था कही, परम वियोग की अवस्था। जब तक मन के अंदर परम वियोग नहीं होगा भगवान के लिए, तब तक संयोग की इच्छा ही, संयोग का सुख ही कैसे प्राप्त हो सके? मिलन का सुख, संयोग का सुख तो तब प्रतीत होता है जब वियोग में भी एक भगवान से मिलने का मधुर संयोग बना रहता है। इसलिए भगवान के प्रति तड़फ हो, व्याकुलता हो, प्राण छटपटाएं, जैसे थोड़े पानी में मछली फड़फड़ाती है, ऐसे हमारे प्राणों के अंदर भगवान के प्रति एक आकुलता हो, व्याकुलता हो, छटपटाहट हो। ईमानदारी से सोचो, क्या कभी ऐसी तड़फ, ऐसी प्यास हमें हमारे भीतर लगी है? संसार को याद करके संसार की तड़प में तड़प करके न जाने कितनी बार आंसू बहाए होंगे, दुखी हुए होंगे, पर कभी वास्तव में परमात्मा के लिए भी इतना समय ईश्वर निकल गया है आपके बिना, क्या ये जीवन इसी तरह से हे केशव समाप्त हो जाए, आपसे मेरा मिलन नहीं होगा? इस प्रकार भगवान से वियोग की अनुभूति करते हुए भगवान के लिए आंसू बहे क्या? हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोई। गुरु नानक कहते हैं भगवान को किसने हंस करके पाया, जिन्होंने भी पाया उनके आगे वो रोए, तड़फे, व्याकुल हुए, और उन्होंने जिनके अंदर ये व्याकुलता आई उन्होंने उन्हें प्राप्त किया। भगवान को पाने का रास्ता रुधन है, जब तक हमारे भीतर आर्द कर्दन नहीं होगा, रुधन नहीं होगा, तब तक उनसे संयोग कैसे हो सकता है? ब्रज की गोपियां रुधन करती हैं, प्रणय की का प्राप्त करना चाहती हैं परमात्मा से, परंतु उनके अंदर अत्यंत व्याकुलता है, और कैसी उनकी वियोग प्रणय की अवस्था है आप भागवत में गोपी गीत आदि के द्वारा पढ़ते अथवा सुनते हैं। कहने का भाव था कि हमारे अंदर ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए बने, ये व्याकुलता जन्म जन्मांतर की वासनाओं को हरण करने वाली है। इस प्रकार अपने मन को भागवत में भगवान के लिए परम आश्रय हो जाए। परम आश्रय भक्ति कैसा भरोसा होना चाहिए, कैसी भगवान में आश्रय कैसा होना चाहिए, ये आपने व्रतासुर की कथा में सुना है। व्रतासुर भगवान से इंद्र के हाथों जब मारे जा रहे थे, उन्होंने भगवान की ओर मुंह कर लिया और भगवान की ओर भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, अजात पक्षव, मैं आपसे मेरे अंदर ऐसी आशा आ जाए, ऐसा भरोसा आ जाए, जैसे उन पक्षियों को, छोटे छोटे उन चोंचों को जिनके अभी पंख नहीं उगे हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है, घोंसले में छोटे छोटे चूचे हैं, भूख लगी है, और वो बार बार अपनी गर्दन उठाकर चोंच को खोल करके आकाश मार्ग से आती हुई पक्षी, अभी हमारी माता आएगी और हमारे लिए भोजन लाएगी, इसी आशा में वो अपने मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं, जैसे उन छोटे बच्चों के अंदर अपनी माँ के लिए आश्रय आशा है, सहारा है, उनको भरोसा है कि माँ आएगी हमारे लिए भोजन लेकर के आएगी, जैसा उन बच्चों में भरोसा है, ऐसा ही भरोसा हे प्रभु मेरे मन में आपके प्रति हो जाए, ये भरोसा मेरे को आपके लिए हो जाए, भगवान के लिए भरोसा हो जाए, नारायण आशय भक्ति है। श्रीधर स्वामी भागवत टीका, उन्होंने बहुत श्रीधरी टीका बड़ी प्रसिद्ध है भागवत में, कहते हैं कि एक बार जब वो लेखन का कार्य कर रहे, भजन कर रहे थे, तो उनके भोजन का प्रबंध राजा के यहां से हुआ करता था। एक दिन की घटना थी कि घोंसले में छोटे छोटे चूचे हैं, पक्षी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने गई है, और इन छोटे छोटे चूचों को बड़ी जोर की भूख लग रही है, बार बार इसी आस में वो अपना मुंह खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, भरोसा है अभी हमारी माता हमारे लिए भोजन लेके ही आती होगी, इसी आशा में समय व्यतीत हो रहा है, पक्षी भोजन का प्रबंध करने में दूर निकल गई है और इन चोचों को इतनी जोर की भूख लगी है कि मानो इनके प्राणांत हो जाएंगे। ऐसे समय पर वो देखते क्या है कि दो मक्खी आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो चोचे के मुंह के अंदर गिर पड़े। उस छोटे से पक्षी के बच्चे ने मुंह बंद कर लिया और उन बच्चों को उस बच्चे को भोजन मिल गया। इस घटना को देखकर श्रीधर स्वामी को आश्रय भरोसा, भगवान पर कैसा भरोसा होना चाहिए ये बात समझ में आ गई, अर्थात भागवत धर्म समझ में आ गया, भागवत तत्व समझ गए और उन्होंने निश्चय कर लिया यदि वो छोटे से चूचे को भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनकी उस छोटे से चूचों को भोजन देना है ये चिंता मेरे ठाकुर को है तो क्या मेरी चिंता मेरे ठाकुर को नहीं है। उन्होंने अपना उसी समय से राजाश्रय को छोड़कर भगवदाश्रय ले लिया, भगवान का आश्रय ले लिया, भरोसा कर लिया भगवान पर। स्वामी राम हिमालय की वादियों में घूम भ्रमण कर रहे थे। उनका नित्य प्रति का नियम था कि दोपहर का भोजन करके और सायं के भोजन के लिए कहीं दूसरे गांव में पहुंचते, उनका वहां भोजन का प्रबंध हो जाया करता था। एक दिन एक शिष्य स्वामी राम के साथ था जो उनका सामान लेकर साथ में चल रहा था। किसी धनी मानी व्यक्ति ने उनका बड़ा अच्छा सम्मान किया, बहुत अच्छा भोजन कराया। मन में सोचने लगा कि यहां से चलकर जहां जाना है वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, रात में देर सवेर में पहुंचेंगे और वहां पहुंचने पर भोजन का प्रबंध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ साथ में यहीं से हमें लेकर चलना चाहिए, कुछ खाने का सामान साथ में लेकर जैसे ही चला। सांझ होने को आ गई, रोज का नियम था कि सांझ होने से पहले गांव के बाहर कोई न कोई व्यक्ति उन्हें मिलता था और जो बड़े आदर के साथ उन्हें अपने घर गांव में ले जाता था, रात्रि को वहां विश्राम करते थे, प्रभात होने पर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर आगे की यात्रा आरंभ होती थी। दोपहर दोपहर भोजन होने तक कोई न कोई व्यक्ति उनको मिल जाता था जो दोपहर का भोजन उन्हें करा देता और फिर दोपहर का भोजन करके वो आगे की यात्रा आरंभ करते और इतना फिर उन्हें कोई व्यक्ति मिल जाता था। ये नियम था, रोज का क्रम था। आज सांझ हो गई है, कोई व्यक्ति नहीं मिला है। स्वामी राम मन में सोचने लगे कि क्या कारण है कि आज अब तक मेरे ठाकुर को मेरे लिए कोई चिंता नहीं हुई। रोज तो मेरा पालक, मेरा रक्षक, मेरा प्रभु मेरे लिए चिंता करते थे, परंतु आज सांझ हो गई है, कोई मिल नहीं रहा है। मन में उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, आज कोई मिला नहीं? मन में उसने कहा, हाँ स्वामी जी। तो कहा कि एक बात पूछो, तुम ये बताओ, तुम में से चोर कौन ऐसा है जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं? घबराए, स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं? बस ये बताओ कि तुम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है कि हम अपना प्रबंध अपने आप कर लेंगे। अब तो जो साथ में खाना लेकर के आया था उसे भूख लगती थी, उसने सोचा कि ये काम तो मेरे से ही हुआ है, स्वामी जी कुछ साथ में नहीं ले जाने देते। और जैसे उसने चुपचाप भोजन छोड़ा और सामने से व्यक्ति चला आया और स्वामी ये देखकर उसे दृढ़ विश्वास हो गया और स्वामी जी के चरणों में अपनी भूल के लिए प्रार्थना करने लगा। तो कहने का अर्थ ये था, उन्होंने कहा तुमने देख लिया, जिसे उस पर जिसको उस पर भरोसा है उसकी चिंता वो स्वयमेव करते हैं। भागवत में भगवान कहते हैं रक्षा पेक्षा मपेक्षते, जो मुझसे अपनी रक्षा की अपेक्षा रखते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ, जो मुझसे अपनी रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, रक्षा पेक्षा अपेक्षते, जिसकी अपेक्षा जिन्होंने अपेक्षा रखी है, जिन्होंने आशा रखी है कि भगवान आप हमारी रक्षा करें, ऐसे जिन्होंने आस रखी है, पर ये आस कैसी है, कितनी दृढ़ता के साथ में है, कितने निश्चय के साथ में है, अंदर से पूरा आत्मविश्वास हो और आत्मविश्वास के साथ बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो, कहने पर सुनने से नहीं, उसने कह दिया और हमने सुन लिया, उससे बात नहीं बनती है ना। एक जगह एक पंडित जी बड़े प्यार से कथा सुना रहे थे और एक भागवत कथा सुना रहे थे और आज एक ग्वालिन का दूध जल्दी बिक गया, दूध दही बेचकर उसने सोचा कि अभी मैं मथुरा जाऊं, दूध दही बेचा उसने और मथुरा से वापस गोकुल लौटना चाहती है, उसने सोचा कि अभी तो कुछ टाइम है, चलो कथा वार्ता हो रही है, कथा में जाकर बैठ जाती हूँ, जाकर कथा में बैठ गई। और कथा में जाकर जब बैठी तो पंडित जी कथा वाच रहे थे और कथा करते करते कहते हैं भगवान का नाम तो भव सागर पार कर देता है, भव सिंधु तार देता है, भगवान का नाम तो तारनहार है, वो सबको तारने वाले हैं, पार लगाने वाले हैं। ग्वालिन बड़े ध्यान से सुनती गई और ध्यान से सुनकर जब कथा पूरी हुई सब अपने अपने घर को चले, ग्वालिन भी अपने घर को चली तो यमुना जी सामने थी। ग्वालिन के मन में ये बात आई कि जब भगवान भव सागर पार करते हैं, भगवान भव सिंधु उतारते हैं, तो भगवान के सामने ये छोटी सी नदी यमुना नदी, छोटी सी नदी और ये कौन बड़ी बात है, भगवान निश्चित रूप से तारते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ वो यमुना में पांव रखा और वो यमुना के अंदर चलने लगी, यमुना चलकर पार किया और दूसरे दिन फिर वही काम, यमुना चल करके इधर वापस लौट आई और मन में बहुत खुश कि मुझे तो बड़ा अच्छा साधन मिल गया, मेरे पैसे बच गए, बड़ी खुश होकर के दूसरे दिन भी कथा में जाकर बैठी और सोचने लगी कि कथा जब समाप्त तो हो जाए तो कम से कम पंडित जी को मैं धन्यवाद दे करके तो जाऊं कि उन्होंने मेरा रोज का दो आना जाने का, दो आना आने का, चार आने का लाभ करा दिया, कम से कम मैं उन्हें धन्यवाद तो देकर जाऊं। वो रुकी, सब लोग चले गए और जाकर पंडित जी के पास पहुंची और कहने लगी पंडित जी आपने बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया, रोज रोज का मेरा चाराना जो जाता था वो आपने बचा दिया। पंडित जी ने कहा कैसे, बस मैंने कल आपकी कथा सुनी और सुनकर मैं यमुना जी में चली और यमुना जी मैंने चलकर पार किया, आपने कहा था ना कि भगवान भव सागर पार कर देते, मैं तो इसी विश्वास के साथ यमुना जी में गई और मैं चली और चलकर पार हो गई। पंडित जी ने कहा क्या बोलती हो, हाँ पंडित जी मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, कहा कि आपको विश्वास नहीं तो चलिए मेरे संग, साथ में ले गई और साथ में लेकर चलकर उसने दिखाया। पंडित जी ने सोचा जब ग्वालिन चल के जा सकती है तो मैं भी क्यों नहीं चल के जा सकता। और वो जैसे यमुना जी में चलने लगे तो डूबने लगे। अब तो पंडित जी बड़े घबराए, बड़े चिल्लाए और वो ग्वालिन कहती है, पंडित जी कहिए ग्वालिन के भगवान, आप याद करिए भगवान को, पुकारिए, कहिए ग्वालिन के भगवान मुझे यमुना पार कर दो, मुझे यमुना चला दो। अब जब ग्वालिन का के भगवान कह दिया, अब तो भगवान को अपनी ग्वालिन के नाम की टेक तो रखनी ही है। वो पंडित जी से तो पार, पंडित जी तो स्वयं डूब रहे थे, परंतु भक्त के नाम का आश्रय ले लिया ना। इसीलिए कहते हैं जो भगवान के भक्त का आश्रय ले लेता है, भक्ताश्रय, इसीलिए भक्त के नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का उद्धार तो करता ही हूँ, परंतु मेरे भक्त का भक्त जो है उसका पहले उद्धार करता हूँ। भगवान अपने भक्त के लाज को नहीं जाने देते हैं। भगवान ने पंडित जी को पार किया। अब पार आकर पंडित जी ग्वालिन के पांव पकड़ लिए कि देवी तुम गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तो कथा ही बांसता रहा, कथा ही सुनाता रहा, और तुमने तो कथा सुनी क्या, तुम तो कथा के सार को पकड़कर तुम तो पार हो गई, भगवान की कृपा तुमने प्राप्त कर ली, आज तेरे कारण मुझे भी भगवान ने पार कर दिया। ये कहकर पंडित जी आंसू बहाने लगे, आत्मविभोर होने लगे। तो कहने का भाव मेरा ये था नारायण, विश्वास हो, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ, जब तक हमारे अंदर का पूर्ण आत्मविश्वास नहीं होगा, पूर्ण भरोसा नहीं होगा, केवल कथा सुन करके हमने ऐसा सुना है, चलो करके देखते हैं, कहीं किंतु परंतु थोड़े भी राई के रत्ती भर भी कहीं लिप्तता रह गई, उसमें शंका रह गई, तो बात नहीं बनेगी नारायण। बाल के नोक के बराबर भी यदि कहीं पर लिप्तता रह गई और फिर मन में पूर्ण रूप से कहीं न कहीं कोई शंका संदेह रह गया, तो निश्चित रूप से भगवान बात बनाते हैं। भगवान ने पांचाली की रक्षा की, द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी, द्रौपदी की रक्षा की, और द्रौपदी ने भगवान से पूछा, हे गोविंद, आपने आने में इतनी देर कर दी कि मैं तो घबरा चुकी थी। भगवान ने कहा, पांचाली, कृष्णे, मैं दूर नहीं था, मैं तो तुम्हारे पास था, जब तुमने गो कहा था मैं द्वारिका से चल पड़ा था, जब विंद कहा था तुम्हारे पास उपस्थित था, मैंने देखा कि तुम अपनी रक्षा के लिए स्वयं सारी अपनी मुट्ठी में और दांत में भीचे खड़ी हो, तो मैंने देखा कि अभी तो तुम अपनी रक्षा अपने आप कर रही हो, जब तुम्हारे हाथों से साड़ी छूट गई, दांत से साड़ी निकल गई, तो मैंने देखा कि अब तो मुझे जाना ही होगा। भगवान देखते हैं कि जो सब ओर से पूर्ण पूर्ण रूप से सब भरोसे को तज करके केवल एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ भगवान की शरण जाते हैं, भगवान कहते हैं रक्षा अपेक्षा मपेक्षा दे, जो मुझसे अपनी रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, चाह रखते हैं, मैं उनकी चाह पूरी करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। रक्षा अपेक्षा मपेक्षते, भगवान से एक बार चाह करके तो देखें, हे गोविंद, ऐसी चाह प्रभु के चरणों में बने और इस चाह के साथ मन को भगवान में लगाएं, परम विरहाकुल अवस्था, परमाश्रय की अवस्था, आश्रय, भरोसा, निश्चय के साथ भरोसा हो। और प्रपत्ति, प्रपत्ति कहते हैं कि अपने हाथ को भगवान के पांव के तले के नीचे रख देना, माने अपने आप को तलवे के नीचे, आप अपना शरण मेरे इस हाथ के ऊपर रख दीजिए, आप अपने शरण को मेरे वक्ष पर रख दीजिए। गोपियां प्रार्थना करती, कर शिरोरुहम कांत कांवदम, हे कांत आप अपने शरण को हमारे हाथ में रख दीजिए, शिरश देहिना श्री कर अग्रहम, हम अपने हाथ को हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए, माने अपने आप को भगवान के चरण रज के रूप में स्वीकार लेना कि मैं उनके चरणों का रज हूँ, भगवान के चरणों की प्रपत्ति है। जिनके अंदर ऐसी प्रपत्ति भावना होती है, जिन्होंने चरण का आश्रय लिया है अर्थात भगवान को पकड़ा दिया है, प्रपत्ति का मतलब होता है भगवान को पकड़ा देना, अपने आप को सौंप देना। ऐसा सौंपा उसने अपने आप को, मैं और मेरा सर्वस्व भगवान आपका है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, सौंप देना। जैसे हैं जो कुछ भी मैं अब तक था, जो हूँ, जो रहूंगा, हे केशव, हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूँ, आपका मैं आपका हूँ। इस भावना से भगवान को अपने आप को सौंप दे, ये भगवान के चरणों की प्रपत्ति है, पकड़ा दे भगवान को। रामकृष्ण परमहंस बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे, एक माँ और बेटा दोनों मेला देखने गए हैं। मेले में बहुत बाजार सजा हुआ है, बहुत भीड़ है, और इस भीड़ भाड़ के में यदि बच्चा माँ की उंगली पकड़ करके चल रहा है तो कदाचित संभावना हो सकती है कि बड़े जोर से लोग चल रहे हैं मेले में, भीड़ में धक्का लगे और धक्का लगकर बच्चा माँ से बिछुड़ जाए, माँ से दूर हो जाए, माँ से बिछुड़ सकता है। यदि माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ होगा तो बच्चा कभी माँ से बिछुड़ नहीं सकता। हमने उनकी उंगली पकड़ी हुई है या उनको अपना हाथ पकड़ा दिया, भगवान को अपना कर पकड़ा दिया है कि प्रभु आप हमें पकड़ लीजिए, पकड़ा दिया है, सौंप दिया है, और सौंप करके भगवान की शरणांगति, भगवान शंकराचार्य के शब्दों में शरणांगति है नारायण, ये रति के साथ उत्पन्न होती है। रति कहते हैं प्रेम को, अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने परम प्रेमास्पद की शरणांगति, उनकी शरण में रहना। अर्थात शरणांगति के दो बड़े सुंदर भाव हैं, एक भाव है बिल्ली का और बिल्ली के बच्चे का, और दूसरा भाव है बंदर का और बंदर के बंदरिया के बच्चे का। बिल्ली अपने बालक को जन्म देती है और ऐसी किंवदंती है कि जब तक बिल्ली अपने बच्चों को सात देहली पार नहीं करा लेती है तब तक उसकी आंख नहीं खुलती है। बिल्ली के बच्चों की आंख तब उघड़ती है, खुलती है, जब वो सात घर घुमा लेती है, और सात घरों में ले जाने के लिए बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाती है, और जिस मुंह से चूहा पकड़ती है और उसी मुंह से वो अपने बच्चे को भी पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर मुंह से पकड़ के ले जाती है और बंदरिया अपने बच्चे को अपने छाती से लगाती है, पीठ में बिठाती है, परंतु बंदर ने बच्चे को नहीं पकड़ा हुआ, बंदर का बच्चा माँ की छाती के साथ लग जाता है, चिपक जाता है, माँ की पीठ के साथ चिपक जाता है और माँ अपने बच्चे को पीठ में चिपकाए हुए बंदरिया कूदती है, फांसती है, लांगती है और यदि कूदते हुए लांगते हुए पीठ से बच्चा गिर जाए तो इसमें बंदरिया का दोष होगा या बच्चे का दोष होगा? बच्चे का दोष कहलाएगा, क्योंकि मां ने नहीं पकड़ा हुआ, बच्चे ने पकड़ा हुआ है। और बिल्ली ने अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, बच्चे ने नहीं पकड़ा हुआ। बिल्ली के बच्चे के समान जिन्होंने बिल्ली के बच्चे ने अपने आप को पकड़ाया हुआ है, भगवान को जैसे चाहे आप इसे ले चलो, जहां चाहे ले चलो, जैसे चाहे ले चलो, जैसे चाहे रखो, ऐसी जिनकी शरणांगति भगवान के लिए है, हम जो जैसा चाहें आप वैसा करें, जो आपकी मर्जी हो, प्रभु की अनुकूलता में अपनी अनुकूलता जानना, प्रभु की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानना, भगवान की शरणांगति है, भक्ति है। बिल्ली का भाव, बिल्ली और उसके बच्चे का भाव, ये जो शरणांगति है नारायण, ये शरणांगति है भक्त की शरणांगति। भक्त का भाव भगवान के लिए ऐसा ही रहता है, ऐसा ही समर्पण रहता है जैसे बिल्ली का और बिल्ली के बच्चे का है। ज्ञानी की शरणांगति मरकट की बंदर की जैसी है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पकड़ाता नहीं है। यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति, हम विचार तो बहुत करते हैं पर भगवान की शरणांगति कर होते हुए कहीं न कहीं यदि हम में से कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान के समझने में, उस तत्व के समझने में आत्मानुभूति नहीं होती, स्वस्वरूप में स्थिति नहीं बनती है। शरणांगत तो है, गुरु की शरणांगत है, गुरु की शरणांगति में जाकर विधिवत उनके चरणों से श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा आत्मरति बनी है और आत्मा की शरण ली है, परंतु फिर भी तत्वानुबोध नहीं हो रहा है तो समझिए कहीं न कहीं हमारी शरणांगति में, हमारे समर्पण में कमी आ गई है, हमारे में कहीं न कहीं त्रुटि रह गई है। ज्ञानी की शरण में, शरणांगति में भूल हो सकती है पर भक्त और भगवान की शरणांगति में कहीं भूल नहीं हो सकती, कहीं त्रुटि नहीं हो सकती। जिन भक्तों ने उस बिल्ली के बच्चे के समान अपने आप को भगवान को सौंप दिया हो, उन भक्तों की भगवान स्वयमेव रक्षा करते हैं। इसलिए मन के शुद्धि के लिए, मन शुद्ध हुए बिना, भगवान कहते हैं जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, बिना भावना के बात आगे की बन नहीं सकती। अंतःकरण की शुद्धि परम आवश्यक है और अंतःकरण शुद्धि में मन की शुद्धि, मन शुद्ध होता है भगवान की भक्ति से, मन शुद्ध होता है भगवान की उपासना से। मन की शुद्धि भगवत उपासना से है। चित्त की शुद्धि, मन से ऊपर चित्त है, इंद्रियां और इंद्रियों से सूक्ष्म मन और मन से सूक्ष्म चित्त, चित्त की शुद्धि कैसे हो? चित्त शुद्ध करने के लिए चित्त में दोष है चंचलता का, अस्थिरता का। चित्त में जन्म जन्म के संस्कार के कारण, चित्त में जन्म जन्म के संस्कारों का एक चित्रण भरा हुआ है। न जाने कितने चित्र इस चित्त में अंकित हैं और समय समय पर वो चित्र हमारे सामने आते हैं, वो वैसे वैसे संस्कार जिन्हें, ये संस्कार समूह जो चित्त में है वो कैसे समाप्त हो, कैसे खाली हो, चित्त हमारा कैसे सम हो, और चित्त की वृत्ति को सम करने के लिए ही योग किया जाता है ना। और चित्त के सम अवस्था को ही योग कहा गया है। तो चित्त की शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले चित्त शुद्ध होता है परमात्मा के चिंतन से। जब तक आपका चिंतन अच्छा नहीं होगा, आपके भीतर में क्या चिंतन चल रहा है, जब तक आपका भीतरी चिंतन नहीं बदलेगा, आपके अंतर भी एक द्वंद चलता रहता है। जब तक अंदर से निर्द्वंदता नहीं होगी, निर्विकारता नहीं होगी, तब तक चित्त शुद्ध कैसे हो? बोले चिंतन से चित्त की शुद्धि होती है। हमारे अंतर भीतर जगत चिंतन चलता रहता है, जगत के लिए ताना बाना हम बनाते रहते हैं। बोले जगदीश्वर का चिंतन हो, परमात्मा का चिंतन हो। बोली परमात्मा का चिंतन करने से, चिंतन के लिए साधन बताया संतों ने जो सहज रूप से आप कर सकते हैं। बोले आप अपने भीतर भगवान के स्वरूप का, नाम और रूप का चिंतन कीजिए। संसार के नाम रूप से, क्योंकि चित्त को और मन को नाम रूप के साथ चलने की आदत है, सहारे से चलते हैं ये दोनों। मैंने कहा दोनों को सहारा चाहिए, चित्त को और मन को। तो यदि सहारा ही देना है, जगत भी नाम रूप से है और जगत के संसार कहते हैं जिसका नाम भी है और जिसका रूप भी दिखाई देता है। यदि आप नाम रूप को हटा दीजिए, नाम रूप को अलग करें, तो केवल परम सत्य तत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। यदि नाम रूप में संसार खड़ा है, तो संसार को हटाने के लिए भगवान का नाम और रूप सामने। लोग कहते हैं ये जगत का नाम और रूप काल्पनिक है। यदि जगत का नाम रूप काल्पनिक है, तो ये नाम रूप की कल्पना करके जगत के इतना बड़ा संसार प्रपंच खड़ा हो सकता है, तो इसके विलय के लिए भगवान का नाम और रूप सामने लाकर सुंदर रूप का भगवान का चित्त में चित्रण कीजिए। चित्त में भगवान का रूप बसे, किसी एक रूप को आप अपने भीतर बसा लीजिए और उस रूप की भावना करके, किसी एक मूर्ति की, किसी भी एक रूप की आप अपने अंदर भावना करें और उस रूप में अपने चित्त को लगाकर अपने चित्त को अन्य संस्कारों से, अन्य चित्रणों से मुक्त करें। इससे चित्त शुद्ध होगा और मन चित्त के शुद्ध होने पर ही बुद्धि स्थिर होगी नारायण, और बुद्धि के स्थिर होने से ही सुख की प्राप्ति होती है। और जिसका मन चित स्थिर नहीं है, भगवान कहते हैं अतः अशांतस्य कुतः सुखम्। संसार में अशांति क्यों है, हम अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर अशांति का कारण क्या है? चाहते तो हम सुख को हैं, पर सुख न मिल के हम बहुत अशांत रहते हैं। हमारी अशांति का कारण यही है, न तो मन में एकाग्रता है, न चित्त में एकाग्रता है, न बुद्धि में एकाग्रता है। बुद्धि भी सम नहीं है, चित्त भी सम नहीं है, मन भी सम नहीं है, अर्थात अंतःकरण की अशुद्धि के कारण। अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही हम अशांत हैं। अपनी अशांति का कारण जो हम मान रहे हैं, ये बाहर से दिखने वाला है। इस व्यक्ति ने मुझे अशांत किया, इस वस्तु ने मुझे अशांत किया, किसी अन्य को दोषी ठहराकर हम उसके साथ द्वेष करके उसे दूर फेंकना चाहते हैं। पर याद रखना, ये बाहरी कारण हमारी अशांति के कारण नहीं है। हमारी अशांति का कारण बाहर मत नहीं है, हमारी अशांति का कारण हमारे भीतर है। इसलिए जब तक भीतर से रोग दूर नहीं होगा, केवल बाहर के मरहम करने से रोग अच्छा नहीं हो जाएगा नारायण। इसलिए भीतरी रोग को, अपने अंदर के रोग को हम निकाल कर दूर करें। अशांति का कारण हमारे भीतर है और वो है अस्थिरता, और वो अस्थिरता दूर होने पर ही स्थिरता मिलेगी, और स्थिरता में ही सुख की अनुभूति होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ अभी विराम देती हूँ।